कलयुगी समय और सतयुगी स्वर्ण युग के आगमन के पूर्व इस छोटे से संगम युग में विश्व कल्याणकारी परमपिता शिव युग परिवर्तन के महान कार्य के लिए अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना प्रजापिता ब्रह्मा को निमित्त बनाकर करते हैं। इस ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ सिंध हैदराबाद में ओम मंडली की स्थापना के साथ साथ हुआ। उस समय इस ज्ञान यज्ञ में तन मन धन और संपूर्ण जीवन से समर्पित हो आहुति डालने वाले चमकदार रत्नों में एक अति रूहानी रत्न भी था, जिसने आगे चलकर अपनी तीव्र लगन, समर्पणमयता, अटल निश्चय बुद्धि, दिव्य मधुरवाणी और ओजस्वी प्रतिभा के कारण सभी के दिलों को जीत लिया, जिसे ब्रह्मा बाबा सहित छोटे बड़े सभी यज्ञवत्स प्यार से मम्मा कहकर संबोधन करने लगे। मम्मा को देखने से ही वात्सल्य मूर्ति मां की भावना सभी में पैदा हो जाती थी। उनको सुनने से ही देवी सरस्वती का साक्षात्कार हो जाता था। जब वो प्रभु प्रेम में अंतर्मुख होकर चलती थी तो सतयुगी राधा या श्री लक्ष्मी की उपासना आ जाती थी। वो मर्यादा की साक्षात देवी थी। उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ प्रसन्नता, उनके व्यवहार में ज्ञान की गहराई से उभरते हुए उदारता, स्नेह, क्षमा, शालीनता के गुण अनुभव होते थे। उनमें सहनशीलता और समाने की परख और निर्णय की अद्भुत शक्ति थी। मम्मा बेमिसाल थी। वो शक्ति सेना की रूहानी लीडर थी। मम्मा सभी की प्यारी और शिव बाबा की दुलारी थी। हर परिस्थिति में अचल अडोल रहकर रूहानी शक्ति का साक्षात्कार कराने वाली मातेश्वरी जगदम्बा ओम मंडली पर आए हुए विघ्नों के समय हिम्मत, उत्साह और निश्चय बुद्धि से कैसे सामना करती है, इस विषय पर आधारित एक नाटिका एजुकेशन विंग की रजत जयंती के शुभ अवसर पर आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पेश है नाटिका मातेश्वरी जगदम्बा कॉट में। मातेश्वरी जगदम्बा कॉट में। लेखनकार बीके चौकसी भाई, एजुकेशन विंग। निर्देशिका बीके प्रभा बहन, शांतिवन। अभिनय शांतिवन, बीके कॉलोनी के बच्चे एवं मम्मा के पाठ में है बीके सीमा लोटस अहमदाबाद। ध्वनि मुद्रण किया है बीके वेणुगोपाल, शांतिवन। मातेश्वरी जगदम्बा कॉट में। मातेश्वरी जगदम्बा कॉट में।
अलग ही है, पीछे भी कोई आ रहा है उसके साथ में।
आगे भी चल रहे हैं।
हाँ, और भी कुछ है, बहुत कुछ है, और भी है। बहुत अच्छे लकड़ी का, बहुत सीधे लग रहे हैं। बहुत सीधे लग रहे हैं।
क्या मालूम क्या होगा, क्या होगा कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं।
हाँ, यही तो है ओम राधे। देखो तो कोई 20-21 साल की होगी, फिर भी कितनी निडर और निश्चिंत लगती है।
हाँ, लगती तो है बाहोश। जज और वकीलों का सामना करने की पूरी ताकत इसमें दिखाई देती है। बड़ी निर्भय लगती है।
अरे, जिसके मन में सच्चाई सफाई हो उसे डर किस बात का। जिसको राखे साई उसे मार सके न कोई।
अच्छा भाई, चलो कोर्ट में जाकर बैठें। वहाँ जज के द्वारा सच झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा।
बहुत बुरी लग रही है।
अच्छा तो ये ही है उमरादे, मेरे मन में तो गलत ही चित्र था, ये तो देवी सी लग रही है। इनके चेहरे को तो देखो, ना कोई चिंता है न आक्रोश। अखबारें और अफवाह उड़ाने वालों ने तो उटपटांग बात फैलाई है। ये तो निहायत साफ दिल और इंसाफ करने वाली लगती है।
अरे यार, समझा तो मैंने कुछ और था और बात निकली कुछ और।
चलो ये भी एक तजुर्बा हुआ कि खुद देखे सुने बिना अखबारों या मुखियाओं की बातों में फंस जाना नहीं चाहिए। ये तो नेक और अच्छे संस्कार वाली नजर आती है।
ये तो खुदा के बंदे लगते हैं, इन्हें कोर्ट में बुलाकर परेशान करने वालों की अल्लाह जरूर कबर लेगा।
ये तो बहुत सीधी शरीफ और नंस जैसे बैरागिन लगती है। क्या इतनी बड़ी संस्था की ये लीडर है, कमाल है भाई कमाल।
अरे भाई, ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले अंदर से कुछ और ही निकलते हैं। अरे अंदर बाहर एक हो ऐसे इंसान इस कलयुग में है कहाँ।
ऑर्डर ऑर्डर।
माय लॉर्ड, मुख्य गवाह ओम राधे जी कोर्ट में उपस्थित हैं। ओम मंडली की लीडर ओम राधे अगर पहले शपथ ले तो कार्यवाही आगे चल सकती है।
यस ठीक है, मुख्य गवाह इधर कठहरे में आकर अपने शपथ ले।
मुझे क्या शपथ लेनी है, क्या कहना है?
आप न्यायाधीश के सामने कहिए कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर समझकर कहती हूँ कि मैं जो कहूँगी सच कहूँगी और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगी।
मैं इन आँखों से यहाँ भगवान को देख ही नहीं रही, तब फिर मैं कैसे कहूँ कि भगवान को हाजिर नाजिर देखकर जो कहूँगी सच कहूँगी? मैं झूठी कसम कैसे उठाऊं? भगवान को यहाँ हाजिर नाजिर कौन देखता है? भगवान तो हम सबका माता पिता है, जो परमधाम या ब्रह्मलोक में रहते हैं। मैं तो आपको हाजिर नाजिर देख रही हूँ, न कि भगवान को। इसलिए आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कह सकती। मैं ये कह सकती हूँ कि आप आत्मा को जज साहब के रूप में हाजिर नाजिर मानकर सच कहूंगी। जज महोदय,
ओम राधे ने ठीक ही कहा।
वो राइट बोलती है,
उसकी बात में वजूद है।
ऑर्डर ऑर्डर। सब शांति बनाए रखिए।
यह उपदेश देने की जगह नहीं है मैडम, इस समय आप कोर्ट में खड़ी हैं। शायद आपका कोर्ट में यह पहला अनुभव है, तो कोई बात नहीं। पहले आप यह कहिए कि आप जो कहेंगी वह भगवान को हाजिर नाजिर मानकर सच कहेंगी।
आप चाहते हैं कि मैं ये कहूँ कि परमात्मा सब जगह है, वे यहाँ वहाँ आप में, पुलिस में, इस सभा में, साधुओं में, डाकू में, मुजरिम और वकील में, सब में है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि वो तो ऊंचे से ऊंचा भगवान है। ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका काम और ऊंचा है उसका धाम। वो सबसे परम पवित्र, पाक और महान है। वो इस पाप की दुनिया में भला सब में कैसे हो सकता है जैसा?
सॉरी मैडम, गुस्ताखी माफ। माय लॉर्ड, ये तो शपथ लेने से इनकार करती है, ये तो कोर्ट का अपमान है।
यह न्यायालय है मैडम, यह कोई सत्संग का स्थान नहीं है। मैं कोई भगवान है कि आप मेरी कसम उठाएगी? भगवान के नाम कसम उठाना यह कोर्ट का लॉ है, आप इस लॉ को तोड़ नहीं सकती।
मैं इस न्यायालय की इज्जत करती हूँ, परंतु जो बात सत्य नहीं और जिसे मैं मानती नहीं उसे बोलकर मैं शपथ कैसे लूंगी?
हाँ हाँ, जो बात वो मानती नहीं उसकी कसम वो क्यों खावे?
आज इसने जो कहा किसी ने भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की।
लोग भगवान को तो देखते नहीं तो फिर हाजिर नाजिर बोलकर झूठ तो बोलते हैं। बात तो बिल्कुल सही है।
अरे भाई, सच क्या झूठ क्या की बात छोड़, कोर्ट का कानून तो मानना पड़ेगा ना।
ऑर्डर ऑर्डर। यह न्यायालय है। जो सभा में केवल सुनने आए हैं वो किसी प्रकार की अंदर अंदर बातचीत कर न्यायालय के कार्य में दखल ना करे। देखो मैडम, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि यह कोर्ट है, यहाँ कानून चलता है, यह सत्संग का स्थान नहीं है। यहाँ आप कानून को तोड़ेगी तो आपको अदालत के अटक के अपराध में गिरफ्तार किया जाएगा।
जज साहब, जैसे आप इस कोर्ट का अपमान कराना नहीं चाहते, वैसे ही ईश्वर, जो कि आपका, हमारा और सभी धर्म वालों का परमपिता है, उसका अपमान मैं कैसे करूं? गीता में भी भगवान के महावाक्य है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, मनुष्य दुराचारी, अत्याचारी और कर्मभ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, तब मैं अवतरण करता हूँ। तब भला परम पवित्र परमात्मा सब में हाजिर नाजिर कैसे हुए?
कुछ भी हो, कोर्ट के कायदे का तो पालन करना ही होगा।
जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं उठा सकती।
मैं अभी भी अवसर देता हूँ, सोच लीजिए, अभी भी कसम उठा लीजिए, नहीं तो कोर्ट के अटक का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मुझे आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर देना पड़ेगा, समझा?
मैं कहती हूँ कि ये बात आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछते जहाँ से वे लोग आए हैं, और जो ओम मंडली में रहते हैं उन्हें वहाँ क्या परेशानी थी?
इस समय तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम।
मैंने बता ही दिया है कि ओम मंडली में संपूर्ण पवित्र या निर्विकार बनने की शिक्षा दी जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि विकार ही नरक का द्वार है। गीता में ही नहीं, हर धर्म में इनको छोड़ने की शिक्षा दी गई है।
परंतु लोग विकार छोड़ने के बजाय घर छोड़कर क्यों चले जाते हैं?
देखिए, दादा के घर में तो सत्संग होता है, उन्होंने तो घर छोड़ा ही नहीं है। हाँ, एक कन्या का हॉस्टल है जिसमें कन्याएं लौकिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करती हैं, और वे सभी अपने माता पिता का स्वीकृति पत्र लेकर आई हैं। कुछ दादा के परिवार के ही सदस्य हैं, कुछ माताएं हैं जिन्हें घर से निकाल दिया गया है, बाकी थोड़े वयोवृद्ध और समर्पित हैं।
माय लॉर्ड, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो ओम मंडली में क्यों आई है, और जो महिला कल तक अपनी दहलीज से पांव बाहर नहीं रखती थी और पति को परमेश्वर मानती थी, आज वो परमेश्वर को छोड़कर कैसे चली गई?
महाशय, अगर पति परमेश्वर है तो क्या उसकी अर्धांगिनी परमेश्वरी नहीं हुई? कल तक परमेश्वरी को उसकी परमेश्वर ने ऐसा कैद क्यों रखा हुआ था कि वो दहलीज से पांव बाहर भी नहीं रख सकती थी? मैं कहती हूँ कि कौन है जो अपने घर को छोड़ना चाहेगा? अपना घर तो सबको प्यारा लगता है, चाहे वो घर कैसा भी हो, झोपड़ी हो या महल हो। परमेश्वर से लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, विषय विकारों से हमें छुड़ाओ। और ये कैसा पति परमेश्वर कि जो पत्नी को एक रात भी चैन की नींद नहीं सोने देता, न उसकी तबीयत देखता है, न मर्जी, अगर विरोध करती है तो मारपीट करता है। महोदय, क्या पत्नी का अपना भी कोई जीवन होता है या नहीं? वो अपने जीवन की मालिक है या नहीं? या वो बिकाऊ चीज है या कठपुतली कि पति जो चाहे जब चाहे उसे नचाए? कहते हैं धर्म पत्नी, क्या इसी का नाम धर्म है? अगर पत्नी हाथ जोड़कर कहती है, हे नाथ अब मुझे छोड़ दो, ये भोग विलास का पशु जीवन मुझे नरक में लगता है, तो उस पर दया करने के बजाय थप्पड़ मार दी जाती है, घर से निकल जाने का आदेश देते हैं। पत्नी सिसक सिसक कर पवित्रता की भिक्षा मांगती है, तब वो पतिदेव लात मारता है। क्या यही हमारी संस्कृति है? यही तो हुआ है इनके साथ।
भाई ये तो अत्याचार है, कहते हैं धर्म पत्नी और उससे सलूक करना अधर्म का।
ऐसा सलूक तो नौकरानी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये तो सरासर ना इंसाफ है, ये तो जुलुम है जुलुम।
भाई ये तो पाप है, पशुओं को भी प्यार से चलाते हैं, तब पत्नी तो हमारी सेवा करती है, उसे मारपीट करना ऊपर वाला भी तो देखता है।
अरे यह तो कलयुग का प्रभाव है, सुनो सुनो सरकारी वकील अब क्या बोलता है।
माय लॉर्ड ये तो यूं ही भड़का रही है, अगर कोई पत्नी पति की बात नहीं मानती, मनमानी करती है, फिर उसके हाथ जोड़ने से या पांव पड़ने से क्या होता है?
उम्रादे की बात तो इंसानियत की है, पत्नी को अपने जीवन में स्वतंत्रता और समानता का अधिकार तो है, परंतु इस मामले में मेरे दायरे में क्या सत्ता है यह मुझे सोचना पड़ेगा।
माय लॉर्ड मैं ओम मंडली की ओर से कुछ दलीलें पेश करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो।
इजाजत है।
माय लॉर्ड धर्म पत्नी भी एक जीता जागता इंसान है, कोई पशु नहीं, उसका भी अपना जीवन और अपना कुछ इरादा होता है, उसके पास भी लक्ष्य हो सकता है, उसे अपने धर्म कर्म नियम पर चलने का भी हक है। अगर पति पत्नी दोनों विकार में जाना चाहें तो उन्हें कौन रोक सकता है, लेकिन अगर पत्नी तन मन पवित्र रखकर विकारों से बचना चाहती है, अपना जीवन भगवान के हवाले करना चाहती है, तो उसे मार पीट कर दबोच कर बलात्कार करना, कोई निहत्ते बलहीन को मारना, ये अपराध नहीं है?
ओम राधे ने तो हमारे दिल की बात कही है, वो तो कोई देवी सी लगती है, मुझे तो उनकी बात जच गई है। ओम मंडली का वकील परमानंद मलानी भी बराबर बोल रहा है।
जज साहब जबरदस्ती पत्नी को मांसाहार या मदिरा पान के लिए मजबूर करना, उसकी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाना, क्या ये अपराध नहीं? उनकी मर्जी के विरुद्ध भोग के लिए अत्याचार बलात्कार करना ये दंडनीय नहीं है? सरकार तो पशुओं को मारने या सताने वालों को भी दंडित करती है, पति ने पत्नी को खरीदा नहीं है, बल्कि वो तो अपने मैया से धन और जेवर लेकर आई है और अपने पति की सेवा करती है, तब उस पर हाथ उठाने वाले, उसकी स्वतंत्रता छीनकर पाशवता दिखलाने वाले पति से बचाना सरकार या न्यायालय का फर्ज नहीं बनता? क्या इस संसार में कोई भी नारी का रक्षक नहीं है? अगर पति सन्यासी बन बाल बच्चों को छोड़ पत्नी को बेसहारा कर चला जाता है, तब उस पुरुष को कोई दंड देता है? उसे ब्रह्मचारी होकर घर बार छोड़ने का हक है, तो पत्नी को क्यों नहीं? अगर मनुष्य रावण जैसा बनकर उस नारी की पवित्रता का अपहरण करना चाहे, तब आप ही कहिए, क्या वो राम को नहीं पुकारेगी? द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा था? क्या उससे कोई शरण नहीं दे सकता? शरण में आई हुई अबला को रावण के पास देने को आप कहेंगे? बोलिए जज साहब, बोलिए आपकी आत्मा क्या न्याय देती है?
लगता है इस नारी में कोई गजब की शक्ति है, इसके तर्क शक है, परंतु मैं तो कोर्ट के कानून से बंधा हुआ हूँ, इस देवी को मदद करना चाहूंगा, पर वो कैसे हो?
माय लॉर्ड ये तो भाषण ही किए जा रही है, प्रश्न का जवाब तो दे ही नहीं रही। कोर्ट यह जानना चाहती है कि पत्नी पति को छोड़कर ओम मंडली में क्यों चली जाती है,
अब कैसा जवाब?
ये जवाब नहीं तो क्या है?
इसकी बात तो राइट है, भगवान अगर हाजी नाजुक है तो इतने लड़ाई झगड़े दुख अशांति इस संसार में कैसे हो। यही कन्या तो देवी जैसी है, मैं उसको हथकड़ी डलवा कर गलत कार्य तो नहीं करता। मेरा दिल इसे सजा देना नहीं चाहता, परंतु कोर्ट का इंसल्ट भी तो नहीं होना चाहिए। क्या करूं?
इंस्पेक्टर, यह मैडम कोर्ट का लॉ मानने को तैयार नहीं है, इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो।
अब क्या होगा?
शायद इस नेक और मासूम को हथकड़ी लग जाएगी।
यह तो फरिश्ता है,
ये तो देवी है,
ये तो सत्य बोलती है,
इसे सजा मत दो।
ठहरो ठहरो, रहने दो।
अच्छा मैडम, आप यह तो बताइए, इतना रोकने पर भी आप ओम मंडली की बहने घर बार छोड़कर दादा के पास क्यों चली गई?
जैसा आपने श्रीमद् भागवत पढ़ा होगा, जब भगवान मुरली बजाते थे तो गोपियां घर बार छोड़ उस मुरली के पीछे क्यों भाग जाती थी? उन पर मुकदमा क्यों नहीं चला? वो यही भगवान की ज्ञान मुरली ही तो थी। हम भी परमात्मा की ज्ञान मुरली सुनने गोपिकाओं की तरह घर छोड़ आई है तो कोई गुनाह तो नहीं किया? जैसा जब कई पुरुष घर बार छोड़ संन्यास ले लेते हैं तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता? नर नारी सब समान ही तो है। माताओं को मार पीट कर अत्याचार करने वाले और ये झूठा मुकदमा पेश करने वाले ओम मंडली के एंटी लोगों को बुलाकर उन्हें क्यों नहीं प्रश्न करते कि वे माताओं पर ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं? सरकार ने जंगल के हिरन बाघ सिंह पंछी कुत्ते बिल्ली की रक्षा का कानून बनाया है और उनकी हत्या करने वालों को सजा दी जाती है, परंतु हम नारियों पर अत्याचार बलात्कार करने वालों से हमारी रक्षा करने का कर्तव्य का क्या कानून का नहीं है?
आप दादाजी को भगवान मानती हैं?
नहीं जैसा, हम दादाजी को परमात्मा या प्रभु नहीं मानते, परंतु निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा स्वयं अपने परम धाम से हम आत्मा रूपी बच्चों को ज्ञान देने के लिए दादाजी के तन में प्रविष्ट होते हैं। हमें परमपिता परमात्मा का अनुभव और दिव्य साक्षात्कार भी हुआ है। हम सभी, आप भी उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। क्या परमात्मा सभी आत्माओं का पिता नहीं है?
अच्छा मैडम, अब आप यह बताइए कि आपको ओम मंडली में क्या क्या सिखाया जाता है और उसे सुनने के बाद मनुष्य घर बार छोड़ दादा के पास आकर रहने लगे, ऐसी वृत्ति क्यों हो जाती है?
देखिए, आप ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करना। ओम मंडली में कुछ समय तो ओम की ध्वनि होती है, सब एकाग्र होकर मधुर स्वर से सामूहिक रूप से ओम की ध्वनि करते हैं और साथ साथ आत्म स्वरूप में स्थित होने का अनुभव करते हैं कि मैं इस शरीर से भिन्न आकाश के सितारे समान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने शरीर की मालिक हूँ और मेरा शरीर जैसे कि एक मंदिर है और मैं आत्मा परमात्मा पिता की संतान शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप शक्ति स्वरूप दिव्य मूर्ति हूँ। मैं आत्मा सूर्य चंद्र सितारों की इस दुनिया से पार दूर दूर परमधाम निवासी हूँ, जहाँ शांति ही शांति है, परम पवित्र शांति। शिक्षा है परमात्मा के महावाक्य, जो हम दादाजी द्वारा सुनते हैं, जिसे ज्ञान मुरली कहा जाता है। उसमें जीवन को दिव्य बनाने के लिए परमपिता शिव परमात्मा ज्ञान योग दिव्य गुणों की धारणा और सेवा के बारे में पढ़ाते हैं। ये ज्ञान मुरली हमें अशुद्ध खान पान और विषय विकारों के बंधन से छुड़ाकर कमल पुष्प की तरह पवित्र और दिव्य जीवन जीने की कला सिखाती है। हम शांति, पवित्रता और सुखमय वाइब्रेशन फैलाकर वैसी ही दिव्य दुनिया का आवाहन कर रहे हैं, जज साहब, वकील साहब, आप तनिक सोचिए, खाना पीना और भोग भोगना, यही तो जीवन की मंजिल नहीं हो सकती? ये मनुष्य जीवन अनमोल है और हमें इसी जीवन में सच्चा आनंद और सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए परमात्मा की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। हम इसी राह पर चल रहे हैं तो क्या हमें मनपसंद जीवन जीने का अधिकार नहीं है?
माय लॉर्ड, ये मैडम तो हमें फिर से भाषण दे रही है। अदालत तो यह जानना चाहती है कि लोग घर बार छोड़कर, धंधा धोरी छोड़कर, वैरागी होकर ओम मंडली में कैसे आकर रह जाते हैं।
आपने ही तो पूछा था कि यहाँ क्या शिक्षा दी जाती है। मैंने आपसे उसी प्रश्न का उत्तर दिया है, परंतु लगता है कि आपको इस संस्था के बारे में पहले से ही गलत धारणा और प्रेजुडिस है। इसलिए जिसमें आपका और सबका कल्याण है, वो बातें आप सुनना नहीं चाहते हैं।
सरकारी वकील को ठीक सुनाई।
ओम राधे ने ठीक उत्तर दिया है। सरकारी वकील संस्था के विरुद्ध में तो लगता ही है।
मेरा तो इन बहनों के बारे में सद्भाव बढ़ गया है।
मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती हाजिर हो गई है।
अरे भाई, थोड़ा चुप तो करो, ये कोर्ट है, धीरज तो धरो, जज साहब क्या फैसला देते हैं।
खैर, मैं जो सुना रही थी कि उससे आपको ऐसा लगता है कि इसे सुनकर ये सब मनुष्य घर बार छोड़कर ओम मंडली में जाकर रहने लग जाएंगे।
तो जो व्यक्ति ओम मंडली में रहते हैं, वो वहाँ कैसे पहुँच गए? क्या वो ऊपर से टपक कर आए हैं?
मैडम बताइए, आपका जवाब क्या है?
न्यायाधीश महोदय, मैंने नारी के दुख दर्द की रोंगटे खड़े करने वाली दास्ता सुना दी। जुल्म और सितम का किस्सा स्वयं एक नारी की जवानी। महोदय, अगर कोई सताया हुआ व्यक्ति अपनी जान की रक्षा के लिए किसी की शरण लेता है, तो इंसानियत का क्या तकाजा है? क्या हम घर का दरवाजा बंद कर दें या उसे निकाल कर हत्यारे के हाथ में सौंप दें? जिस किसी भी महिला को उसके पति ने मार पीट कर निकाला है, हमने उसे शरण दी है और तार से उसके पति को इतल्ला दी है कि वो हमारे पास पहुँच गयी है। अगर न्यायालय उस पति को जुल्मो सितम से रोकने और महिला को पवित्रता का जीवन जीने का भरोसा दिला सकता है, तो वो महिलाएं आज भी वापस जा सकती हैं।
प्रश्न ये नहीं है माय लॉर्ड, प्रश्न यह है कि क्या पति अपनी पत्नी के साथ भोग करना चाहे तो तो क्या उसे इस बात का अधिकार है या नहीं? लगता है कि मैडम को इस बात का पता नहीं है कि पति को देश के विधि विधान के आधार पर यह हक हासिल है, जिसे कि कंजुगल राइट कहा जाता है।
जहर खाकर किसी को अपनी हत्या करने का अधिकार नहीं होता, और महाशय दूसरे को जहर देना तो मृत्यु का अपराध होता है। हमारी श्रद्धा जिस पर है वो सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता और हमारी संस्कृति के धरोहर समस्त शास्त्र के पन्ने पन्ने पर लिखा है। काम महाशत्रु है, ये नरक का द्वार है। उस काम कटारी के द्वारा दूसरे के घात करने को आप अधिकार कहते हैं? ये तो पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण है, अथवा वाममार्ग की गलत विचारधारा। हमारी दैवी संस्कृति में तो ब्रह्मचर्य या पवित्रता पर बल दिया है और पूर्ण रूप से अहिंसक रहने को कहा गया है।
ठहरिए मैडम, रुकिए। देखो, हम कानून की बात कर रहे हैं, धर्म की नहीं। हम विधान और संविधान का हवाला दे रहे हैं, पुराण शास्त्र पोतों का नहीं।
अब तो ये कानूनी मुद्दा सामने आया है।
अरे भाई, कानून तो इंसान ने बनाए, कानून तो अंधा होता है, अंधा।
अरे भाई, नर नारी तो भगवान के बनाए हुए हैं। ये तो सोचो कि हम सब पैदा कैसे हुए।
आप अपराध और अधिकार के भेद को पहचानिए। क्या हम ये भी भूल गए हैं कि हम भगवान की संतान हैं और इसलिए हमें शैतानी काम नहीं करने चाहिए?
तो क्या आप इसे शैतानी काम कहती हैं? माय लॉर्ड, मैं कंजुगल राइट की बात कर रहा हूँ, जो कानून कहता है वही दोहरा रहा हूँ।
माय लॉर्ड, आपकी याद से कुछ कहना चाहता हूँ।
हाँ, आप कह सकते हैं।
क्या मुझे कोई बता सकता है कि कंजुगल राइट का कानून किस विधानसभा में या संविधान समिति ने बनाया है? क्या इसका न्यायिक आधार है? क्या कभी इस पर बहस हुआ है? माय लॉर्ड, कंजुगल राइट की बात संविधान में कहीं नहीं लिखी गई है, ये किसी न्यायाधीश की कही हुई बात है जिसे सरकारी वकील महाशय दोहरा रहे हैं। किसी न्यायाधीश का अभिप्राय संविधान का हिस्सा नहीं होता। मैडम तो ये कह रही है कि पति और पत्नी दोनों अपनी परस्पर स्वीकृति से कुछ भी करते हैं तो उनका मामला है, परंतु यदि दोनों में से कोई एक भी पक्ष अपने धार्मिक विश्वासों के कारण या अन्य किसी भी कारण से इसे छूटना चाहता है तो इसे पति का अधिकार कैसे माना जाएगा? पति को ये भोगने का विशिष्ट अधिकार कैसे मिल जाएगा? अधिकार तो पति पत्नी दोनों के बराबर होते हैं, इसलिए दोनों में से कोई एक दूसरे की इच्छा विरुद्ध बलात्कार या अत्याचार से भोग कार्य नहीं कर सकता।
ओम मंडली के पक्ष के वकील ने जो दलीलें पेश की है उस अनुसार पति अपनी पत्नी के मर्जी के खिलाफ उस पर कोई बल प्रयोग नहीं कर सकता, और इस संविधान समिति या विधान परिषद ने लिखित स्वरूप में पति के इस हक के बारे में उल्लेख नहीं किया है। मैं सरकारी वकील से कहना चाहता हूँ कि लोग के भड़काने में आकर किसी निर्दोष रूहानी और पाक लोगों की संस्था पर आक्षेप करने से दूर रहना चाहिए। दोबारा इस बात को ध्यान रखा जाए।
Thank you.